نحمده نصلي على رسوله الكريم الحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میری گفتگو کا عنوان ہے رمضان المبارک اور خواتین. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہی کا و عظیم سلطانک. ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایک آدمی نے یہ دعا پڑھی اور اس دعا کو سن کر فرشتے گھبرا گئے. آپس میں کہنے لگے کہ اس شخص نے جو دعا پڑھی ہے اس کا ہم کتنا اجر لکھیں. تو آخر انہوں نے اللہ سے پوچھا کہ اے اللہ، تیرے بندے نے کہا کہ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہی کا و عظیم سلطانک، کہ اے رب، تیرے ہی لیے حمد ہے جیسے کہ تو خود چاہے، اپنے جلال، تیرے چہرے کا جلال اور تیری جو عظیم و شان بڑی سی حکومت اور سلطنت ہے، بادشاہت ہے، اس کے مطابق ویسی تیری حمد ہے. تو اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اس دعا کا ہم کیا اجر لکھیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کلمات ایسے ہی لکھ دو جیسے کہ اس نے میری حمد کو بیان کیا ہے. ملاقات کے وقت جو ہے میں اس کا اجر دوں گا، ملاقات کے وقت جو بھی ان کا صلہ بنے گا میں خود دوں گا. تو سب سے پہلے دورہ تفسیر کی ابتدا پر اور نیکی کے کام کی ابتدا پر ہم اللہ رب العزت کی انہی الفاظ میں تعریف بیان کرتے ہیں. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہی کا و عظیم سلطانک. اور ہم اپنے پیارے رب سے یہ دعا بھی مانگتے ہیں جو داؤد علیہ السلام کی خاص دعا تھی، اور داؤد علیہ السلام کی عبادت اللہ رب العزت کو بہت پسند تھی. کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان عابد البشر، کہ وہ بہت ہی عبادت کرنے والے تھے. جو عبادت کرنے والے لوگ ہیں ان میں بیسٹ عبادت کرنے والے تھے، اور اللہ رب العزت نے ان کو نعم العبد کا لقب بھی عطا کیا. ان کی یہ دعا ہے اللہم انی اسألک حبک و حب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی و اہلی و من الماء البارد. یہ فذکرونی کا جو پہلا ایڈیشن ہے اس کی دعا نمبر 320 ہے، 320. تو وہاں سے بھی ہم مانگ سکتے ہیں یہ دعا. اور اے اللہ، میں تجھ سے مانگتی ہوں تیری محبت اور اپنے ان بندوں کی محبت بھی مجھے عطا کر جو تجھ سے محبت کرتے ہیں، اور ان اعمال کی محبت مجھے عطا کر جو تیری محبت کے مقام تک پہنچاتے ہیں. اے اللہ، ایسا کر دے کہ اپنی جان، اپنے اہل خانہ کی محبت اور ٹھنڈے پانی کی چاہت سے بھی زیادہ مجھے تیری محبت اور چاہت ہو. تو اس دعا کا ایک حصہ کیا ہے کہ اپنے ان کاموں کی محبت مجھے عطا کر جو تیری محبت کے مقام تک پہنچاتے ہوں. والعمل الذی یبلغنی حبک، اور دور تفسیر جو ہے یہ اللہ کی محبت کے مقام تک پہنچانے کا بہترین ذریعہ ہے. ترمذی، دارمی، بیہقی کی روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے کہ جس شخص کو قرآن مجید کے مطالعے نے میرا ذکر کرنے اور مجھ سے دعا مانگنے سے روک رکھا ہو، میں اس کو وہ افضل ترین چیز دوں گا جو دعا مانگنے والوں کو دیتا ہوں. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے کلام کی فضیلت باقی تمام کلاموں پر ایسی ہے جیسی اللہ تعالیٰ کی اپنی مخلوق پر ہے. تو میری پیاری بہنوں، اس حدیث سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کا ذکر کرنے یعنی قرآن مجید پڑھنے پڑھانے میں مصروف ہے اور اس کو دعا مانگنے کا موقع نہیں ملتا، تو اللہ رب العزت جو ہے بن مانگے ان کو مانگنے والوں سے زیادہ عطا کرے گا، کیونکہ قرآن مجید جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے. کیونکہ کوئی شخص اگر قرآن پڑھنے پڑھانے میں مصروف ہے اور اس کو دعا مانگنے کا موقع نہیں ملتا تو اللہ رب العزت ان کو بن مانگے مانگنے والوں سے زیادہ عطا کریں گے. کیونکہ جتنے بھی ذکر انسان دنیا میں کرتا ہے ان میں افضل ذکر جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے, اللہ کی کتاب ہے, اور اللہ کی کتاب کے سنگ انشاءاللہ ہم پورا قرآن جو ہے وہ پڑھیں گے اور قرآن مجید میں سے گزریں گے. اور ہم خواتین جو کہ بہت ہی مصروف رہتے ہیں, ہمارے گھریلو مصروفیات, اور بعض اوقات خواتین جو ہیں وہ امور خانہ کی منصوبہ بندی کرنے میں اور یا پھر کچن داری میں یا عید کی تیاری میں یا بازاروں میں یا فون پر یا ادھر ادھر ہم لوگ زیادہ وقت اپنا جو ہے نا وہ لگا دیتے ہیں. تو مجھے اور آپ کو رمضان المبارک کے آغاز پر ہی جو ہے وہ اپنی پلاننگ کرنی ہے, اپنا محاسبہ کرنا ہے, اور یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم رمضان المبارک کے مہینے کو بہترین سے بہترین طریقے سے جو ہے وہ گزاریں, کچن کے کاموں میں سمجھداری سے کام لیں تاکہ میرا اور آپ کا وقت جو ہے وہ بچ سکے. سحری افطاری کی ضروریات جو کہ ہمارے بچوں کی ضروریات ہیں, ہمارے اہل خانہ کی ضروریات ہیں, تو اگر ہم ابھی سے اس کی تیاری کر لیں تو ہمارا وقت جو ہے اس میں بچت ہو سکتی ہے. جیسے لہسن ادرک چھیلنا, اس کو پیس کے رکھ لینا, یا بعض اوقات جیسے بچے زیادہ تر بیک چیزیں پسند کرتے ہیں تو چکن ٹکا کو مسالہ لگا کر فریزر میں ڈال سکتے ہیں, یا اور اس طرح کی بچوں کے لیے کوئی پیٹیز, چکن پیٹیز یا کچھ بنا کر تھوڑا سا, تاکہ ہم ایسا نہ ہو کہ رمضان المبارک کے دوران ہم اپنے آپ کو کھانے پکانے میں مصروف رکھیں. گو کہ افطاری اور سحری کا بہت اجر ہے, لیکن ہم سحری اور افطاری میں اگر تھوڑی سی پلاننگ پہلے کر لیں, اور نمبر دو ہم تھوڑی سادگی کو رواج دیں, ون ڈش کو اپنے گھر میں رواج دے سکتے ہیں, اس سے بچت بھی ہوگی, صحت بھی ہوگی, اور پھر سہولت بھی رہے گی. اور اسی طرح جو ہے وہ اگر ہم اپنے بچوں کو اپنے گھر کے کاموں میں ساتھ مصروف کر لیں, جیسے ابھی چھٹیاں بھی ہیں, بچے گھر پہ ہیں, تو ہم ساتھ بیٹھ کر ان سے ریکویسٹ کریں کہ بچے جو ہیں وہ گھر کے کاموں میں ہمارا ہاتھ بٹائیں, تو اس طرح بچوں کی تربیت بھی ہوگی, بچوں کو ان کے اندر احساس ذمہ داری پیدا ہوگا, اور نیکی کے کام میں وہ والدین کے ساتھ, میرے ساتھ, آپ کے ساتھ جو ہیں وہ حصہ ڈالیں گے. اور پھر ہم یہ بھی کر سکتے ہیں خواتین کے افطاری سے پہلے ہم دعا جو ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ مل کے کریں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ مل کر دعا کرتے تھے, کیونکہ روزے دار کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور افطاری کے وقت کی دعا جو ہے وہ خاص طور پر قبول ہوتی ہے, کیونکہ وہ مزدوری کا وقت ہوتا ہے, روزے دار نے صبح سے روزہ رکھا ہوتا ہے. تو جیسے ایک حدیث سے پتہ بھی چلتا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہیں وہ عرش اٹھانے والے فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے عرش کو چھوڑ دے اور روزے داروں کی دعاؤں پر آمین کہے. تو ہم جو ہے وہ شام کے وقت جو ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ مل کر, جیسے آپ بیزی ہوتی ہیں, میں بیزی ہوتی ہوں, لیکن ہم بچوں سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ بیٹا افطاری سے 5 منٹ پہلے, 10 منٹ پہلے, 7 منٹ پہلے ہم دعائیں مل کر جو ہے وہ پڑھیں گے. بچوں میں سے کسی کی ڈیوٹی لگا سکتے ہیں کہ آج ایک بچہ دعا کرے گا, پھر دوسرا, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بچے نے تھوڑی سی کی, پھر دوسرے نے, پھر تیسری, اور آپ اس کو مکمل کر دیں. اور ایک اور کام ہم خواتین کر سکتے ہیں کہ ہماری دعائیں جو ہیں ویب سائٹ پہ ڈلی ہوئی ہیں, پہلے عشرے کی, دوسرے کی, تیسرے کی, ویسے اور بھی دعائیں آپ مانگ سکتے ہیں, لیکن فرض قرونی میں جو چیپٹر ہے رمضان کی دعاؤں کا, اس کی ریکارڈنگ بھی اویلیبل ہے ویب سائٹ پر, تو ہم وہاں سے بھی لگا سکتے ہیں تاکہ بچوں کو دعائیں یاد ہو جائیں سحری افطاری کی, اور ویسے بھی رمضان کے تینوں عشروں کی جو ہے وہ دعائیں یاد ہو جائیں. اسی طرح میں اور آپ اپنے بچوں, یعنی ابھی ان دنوں رمضان شروع ہونے سے پہلے ہم اپنے بچوں کو بٹھائیں اور ان کے ساتھ مل کر رمضان کی تیاری کریں کہ بیٹا ہم مل کر رمضان کی پلاننگ کرتے ہیں. مثلا میں اپنے بارے میں پوچھ سکتی ہوں کہ آپ کو بچوں میری کوئی बात जो है वो मेरी जो कोई बुराई है या बुरी सिफ्त है मेरे अंदर, आप मुझे बताओ एक बात जो कि बच्चे ख़ास तौर पे जब मुझे कहेंगे तो फिर मैं कोशिश करूँगी कि मैं रमज़ान में उसकी तैयारी करूँ, मतलब मैं रमज़ान में अपनी उस बुराई पर काबू पाऊँगी। तो मसलन ये हो सकता है कि चूँकि हम औरतें हैं, ये हो सकता है कि हम बदज़बानी करते हों, हम गीबत करते हों और इधर उधर की बातें करते हों, हमें बच्चे उसका एहसास दिला दें या हमें ख़ुद एहसास है अपनी ग़लती का, गुनाह का। ये हो सकता है कि हमें चीखने चिल्लाने की आदत हो तो रोज़े में हम बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हों आम दिनों से बढ़कर। तो मुझे एक अच्छी माँ बनना है, रोज़ेदार और अच्छी माँ बनना है, नेक माँ बनना है, रोज़ा रख कर ना बदज़बानी करनी है, ना गीबत करनी है और ना ही अपना रोज़ा जो है उसको ज़ाया करना है। तो अगर मैं पूछूंगी बच्चों मुझे अपनी एक ग़लती बताओ, तो इसी तरह हम बच्चे भी अपने लिए कोई एक एक टारगेट तय कर सकते हैं किसी भी बुराई को अपने अंदर से निकालने का। हो सकता है कोई बच्चा फ़राइज़ में कमी करता हो या और उसके अंदर कोई बुराई हो, या हमारे अंदर गुस्सा ज़्यादा है, या मैंने शुक्री ज़्यादा करती हूँ, तो व्हाटएवर कोई एक चीज़, यानी हम उसमें बच्चों को जब शामिल करेंगे ना तो बच्चों को अच्छा लगेगा कि अच्छा ठीक है, तो मामा अब आइंदा ऐसा नहीं करेंगी और बाबा और पापा भी ऐसा नहीं करेंगे। तो हम अपनी और अपनी औलाद की तरबियत के लिए फैमिली के साथ मिलकर एक इस तरह का सेटअप कर सकते हैं। इसी तरह मेरी प्यारी बहनों एक काम हम और कर सकते हैं कि चूँकि रमज़ान का महीना नेकियों का मौसम बहार है, सालाना नेकियों का मेला लग गया है और इस मेले में जो है वो फूलों फलों की, नेकियों के फूलों और फलों की कसरत है। जैसे मौसम बहार में हर तरफ फूल नज़र आते हैं, रंगीनियां नज़र आती हैं, खुशबू बिखरती है, तो अब रमज़ान के महीने में दिलों में ईमान और नेकियों के बीज जो है वो बोने हैं और अब तक की ज़िंदगी में जो कमी बेशी हो गई है तो उसकी हमें तलाफ़ी करनी है। और ये जो नेकियों का मौसम बहार है इसकी ज़मीन मेरा और आपका दिल और जिस्म है। जैसे फूल फल लगाने के लिए ज़मीन चाहिए होती है ना, तो नेकियों के फूल फल लगाने के लिए जो दिल दिमाग और जिस्म चाहिए वो मेरा और आपका दिल और दिमाग है। तो ज़मीन जितनी ज़रख़ेज़ होगी वो कांट ये जो झाड़ियाँ हैं, झंकार है, कांटे वगैरह हैं, इनसे जितनी वो पाक साफ़ होगी ज़मीन उसी कसरत से फल आएंगे। तो मुझे और आपको अपने दिल को जज्बात वो जो ख्वाहिशात हैं, बुरी ख्वाहिशात और गिबत चुगली हसद बहुतान कीना कदूरत गलत चीज़ें जो हैं जो दिल के अंदर हैं, हमें अपने दिल को उससे पाक करके ज़मीन को साफ़ सुथरा करना है ताकि जो है वो नेकियों की जब सेल लगे तो मैं नफल नेकियां करके फ़र्ज़ के बराबर सवाब ले सकूं और फ़र्ज़ का सवाब जो 70 फ़र्ज़ों के बराबर है मुझे मिल सके। रहमत खुदावंदी जब जोश में आए तो मैं उसे अपनी झोलियाँ जो है वो भर सकूँ। तो याद रखिएगा कि रमदान, एक तो रमदान है जो कि पूरे महीने के रोज़े हैं और एक है रोज़ा, तो रमदान में रोज़े रखे जाते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरत अल बकरा आयत 183 से 187 तक जो है वो रोज़े का मकसद भी बताया है और रमदान का मकसद भी बताया है। रोज़े का मकसद क्या है? लअल्लकुम तत्तकून, सूरत अल बकरा आयत 183। और रमदान का जो मकसद है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें जो बताया है तो वो क्या है जो कि मुझे और आपको लेना है? और वो मकसद है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दो मकासद बताए हैं 185 में, वले तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम व लअल्लकुम तशकुरून, कि जिस हदायत से अल्लाह ने तुम्हें सरफराज किया है इस पर अल्लाह की किब्रियाई का इजहार और एतराफ़ करो और शुक्रगुजार बनो। तो मेरी प्यारी बहनों रोज़े जो हैं वो तकवा की तरबियत के लिए हैं और तकवा जो है आम तौर पे हम तकवा को लिबास में तलाश करते हैं और ज़ाहरी जो भी नेकियां हैं हम उसमें तलाश करते हैं, लेकिन इसका मस्कन, इसका मरकज़, इसका सेंटर जो है वो तकवा का ये हमारा दिल है। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया हा हुना और फिर कहा कि ये क्या है हा हुना, ये कल्ब है, यानी तकवा जो है वो दिल में है और दिल जो है वो नरम हो, और हमारे दिलों में अल्लाह की खौफ पैदा हो, अल्लाह की मोहब्बत पैदा हो, और हमारी इबादत को बड़े खुलूस के साथ और बड़े इखलास नीयत के साथ और इस यकीन के साथ हम हर इबादत को करें कि अल्लाह के लिए कर रहे हैं, और फिर मेरा और आपका प्यारा अल्लाह जो है वो उसको कबूल कर ले। और बहसियत एक खातून खाना के, एक माँ के, एक बीवी के, एक काम हम और कर सकते हैं कि रमदान में साल भर की हम प्लानिंग करें, क्योंकि ये सालाना नेकियों का मेला है, सालाना नेकियों की सेल इसमें लगेगी। तो हमारा जैसे एक सालाना ये एक इम्तहान है। आपको पता है कि रमदान मुबारक की अहमियत क्यों है, हम महीने भर के रोज़े क्यों रखते हैं, या ये कि रमदान में नेकियों का अजर इतना ज़्यादा क्यों है, इसकी क्या वजह है? तो ये बात याद रखिएगा कि शहरु रमदान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरान, के रमदान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया। तो रमदान की अहमियत रोज़े की वजह से नहीं है, बल्कि कुरान के नाजिल होने की वजह से ये अहम है। ये जश्न कुरान का महीना है, ये नज़ूल कुरान की शान है, ये उसकी अजमत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शुक्राने के तौर पर पूरे महीने के रोज़े रखने का हुक्म अता किया। और तो रमदान मुबारक में बहुत सी नेकियों का अजर है, लेकिन कुरान जो है इसकी सबसे अहम और सबसे खूबसूरत और सबसे बड़ी नेकी है कि कुरान पढ़ें, समझें और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजार सकें। तो हमें रमदान में इंशाल्लाह नाजरा पढ़ना है कम से कम। अब छुट्टियों में चूंकि रमदान आ रहा है, तो अपने बच्चों को भी बिठाएं साथ, उनसे अभी से बात करें कि बेटा रमदान की प्लानिंग करो, और हम नोट करें कि प्लानिंग में ये बात शामिल होनी चाहिए, एटलीस्ट नाजरा एक दफ़ा तो ज़रूर ख़त्म करना है, मुकम्मल करना है सबने, हमने बच्चों ने। अगर बच्चों ने पूरा कुरान अभी नहीं पढ़ा, छोटे हैं, दो पारे पढ़े हैं, 5, 4, 10, तो कहना है कि इसको पढ़ना है आपने, बार बार पढ़ना है। अगर कुछ भी नहीं पढ़ा, नूरानी कायदा ही है, तो नूरानी कायदे का सबक जो है वो बार बार पढ़ें, क्योंकि जब बच्चे नूरानी कायदे को भी, जो कि इब्तदाई कायदा होता है, उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से फरावानी से पढ़ते हैं, तो कुरान में बहुत अच्छा चलते हैं, क्योंकि कायदा फाउंडेशन है, बुनियाद है। तो नाजरा की प्लानिंग भी करनी है, और एट द सेम टाइम इंशाल्लाह दौरे तफसीर में हमने शिरकत करनी है। और जैसे हमारे उर्दू में दो दौरे तफसीर हो रहे हैं, एक ईस्ट कोस्ट के मुताबिक, एक वेस्ट कोस्ट के टाइमिंग के मुताबिक, और हमारा यूथ का समर कोर्स भी हो रहा है रमदान स्पेशल के नाम से, जिसमें कुछ सूरतें हैं कुरान की जो तर्जमा तफसीर से पढ़ाई जाएंगी, और ये ऑनलाइन अवेलेबल है, ये कोर्स ऑनलाइन कहीं भी, क्योंकि ये विज आई क्यू पर है, और पूरी दुनिया में कहीं भी कोई इसको करना चाहे ज्वाइन, तो आप भी कर सकती हैं, आपके बच्चे भी कर सकते हैं। और हमारी यूथ के लिए ये कोर्स हमने इंग्लिश में डिज़ाइन किया है, तो ये बहुत ही अच्छा मौका है कि बच्चे जो हैं उस इंग्लिश के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ये 4 days a week है, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे और थर्सडे। तो मज़ीद इंफॉर्मेशन आप दारुलईमान की वेबसाइट से जो है वो ले सकते हैं। तो मेरी जो गुफ्तगु है, इसमें मैं यही चाह रही थी कि बहसियत ख़वातीन के, बहसियत एक मुस्लिम औरत के, एक मुस्लिम माँ के, मेरा और आपका किरदार क्या हो। तो मुझे और आपको इंशाल्लाह ये रमदान जो है वो इस तरह से गुजारना है कि बच्चों की तरबियत, और तरबियत में जो नज़ाकतें हैं और जो मेरी और आपकी ज़िम्मेदारियाँ बनती हैं, उसके साथ ही हम आगे बढ़ सकें, क्योंकि मेरा और आपका जो चैलेंज है वो बहुत अहम है। जब तक मेरी तरबियत नहीं होगी तो मैं एक अजीम माँ नहीं बन सकती, और जब तक अजीम माएँ नहीं हम बनेंगे तो बच्चों को अजीम नहीं बना सकती। तो आइए खालिक़े कायनात की मोहब्बत सीखें, खालिक़े कायनात की अताअत सीखें, खालिक़े कायनात की खालिक़े कायनात की जो है वो फरमाबरदारी सीखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दोस्ती करें, कुरान के संग संग अपना रमदान का महीना जो है हम गुजारें। और इसके लिए जो दौरा तफसीर होगा, तो तरीका ये होगा कि एक पारा इंशाल्लाह रोज़ाना होगा, और उसमें आपने मौलाना का तर्जमे वाला कुरान अपने सामने रखना है, और नोट्स जो है वो लेते चले जाना है, कोई अहम वाक्या, कोई आयत, और ऐसे ही समझना है कि मैं क्लास रूम में बैठी हूँ, क्योंकि जो सोएगा वो खोएगा। लेटने वाला या तवज्जो से जो नहीं करेगा तो वो उसको सही तरीके से मुकम्मल नहीं कर सकता। और ये ना हो कि छुट्टी कर ली जाए और अच्छा चलो थोड़ी देर में कर लेती हूँ और मेरी ये मसरूफ़ीत है, मेरी वो मसरूफ़ीत है। तो याद रखिएगा, ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। और इसके साथ मैं एक हदीस आपको सुनाना चाहती हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस बहुत ही ख़ूबसूरत हदीस है, जिससे हमें कुरान मजीद के बारे में पता चलता है। इसको सही मुस्लिम ने रवायत किया है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, इन्नल्लाह यरफ़ाउ बिहाज़ल किताबी अक़वामं व यदउ बिही आखरीन, कि अल्लाह इस किताब के ज़रिए कुछ लोगों को उठाएगा और कुछ लोगों को गिराएगा। तो इसका ये मतलब है कि जो कुरान मजीद को लेकर खड़े हो जाएंगे, समझेंगे, अपने हाथों में इसका चिराग पकड़ लेंगे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको दुनिया में भी और आखरत में भी सरबुलंदी अता करेगा। और जो ये किताब लेकर बैठ जाएंगे, उसको साइड पे रख दिया, उसको पढ़ नहीं रहे, उसके बारे में गौर व फिक्र नहीं कर रहे, तवज्जो नहीं दे रहे, तो फिर ये कुरान मजीद जो है, यानी उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जब कुरान को रद्द कर दिया, तो अल्लाह भी उनको गिरा देगा। ना दुनिया में उनको सरबुलंदी मिलेगी और ना ही उनको आखरत में सुरखुरुई जो है वो हासिल होगी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रमदान में जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ कुरान मजीद का दौरा किया करते थे। और उसी सुन्नत को ज़िंदा और ताज़ा करने के लिए दारुल ईमान ने दौरे तफसीर का एहतमाम किया है। और हमें मुस्नद अहमद की रवायत से पता चलता है कि क़यामत के दिन रोज़ा और कुरान दोनों बंदे की सिफारिश करेंगे। तो अगर हम कुरान को पढ़ते हैं, हम कुरान को समझते हैं, तो आप देखें कि उस वक्त मेरे और आपके लिए सिफारिश होगी। हशर का मैदान होगा, कोई नेकी नहीं और काम इंसान के आएगी सिवाय इसके जो कि हुस्न अमाल हों और अल्लाह की रज़ा के लिए जो हैं वो किए गए हों। तो प्यारी बहनों, कुरान मजीद मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह का तर्जमे वाला आप लेकर बैठें, बा मुहावरा तर्जमा है, बहुत अच्छा है। अपनी एक नोटबुक साथ रख लें, सिक्के की पेंसिल, लेड पेंसिल ले लें, और साथ साथ जो है वो आप जो भी आयत अच्छी लगे, जो दिल पे आपको अमल के लिए कोई उसूल ले रही हैं, तो डेली के अपने नोट्स हर पारे के ज़रूर लें और पूरे जो आपने सुना हो उसका खुलासा, क्योंकि हर पारे के एंड पर कुछ सवाल आपसे पूछे जाएंगे, तो आप उसमें फिर पार्टिसिपेट करें कि हाँ इसका जवाब ये है, या मैंने ये सुना, या मैंने ये किया। तो फिर आप देखें कि पूरे कुरान में से जब हम एक दफ़ा गुजर जाएंगे, तो इन दी लॉन्ग रन हमारी लाइफ के लिए ये बहुत ही बेहतरीन सरमाया जो है वो जमा हो जाएगा। आपको ये बात पता ही होगी कि अगर कुछ बच्चों को उर्दू समझ में आती है, तो बेस्ट है कि वो उर्दू के पूरे कुरान में से गुजर जाएँ, कि वो बैठें सुने। बेशक वो इंग्लिश का तर्जमे वाला कुरान लेके बैठें, लेकिन उर्दू का पूरा कुरान दौर तफसीर का वो सुन सकते हैं, अदरवाइज़ वो समर कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो बातें और भी बहुत हैं, लेकिन माशाल्लाह अगर आप अपनी प्लानिंग करेंगी और कि मैं रमदान कैसे गुजारूं और बच्चों के संग संग रमदान और मेरी ज़िम्मेदारी बहसियत एक माँ के, एक बीवी के क्या बनती है, तो मैं समझती हूँ कि इंशाल्लाह हम बहुत ही फ़ायदा हासिल करेंगे। तो हमारा हाल तो ये है कि दिल सोच से खाली रहते हैं, आंखें हैं कि नम होती नहीं, कहने को मैं एक एक जलसे में पढ़ पढ़ कर सुनाया जाता हूँ, ये मुझसे अकीदत के दावे कानून पे राजी गैरों के, यूं भी मुझे रुसवा करते हैं, ऐसे भी सताया जाता हूँ। तो कुरान मजीद जो है, जो इसकी असल रूह है, उसको मुझे और आपको पूरा करना है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करना है कि नेकी के इस मौसम में उसने मुझे और आपको तौफीक अता की। और मेरा और आपका रमदान कबूल हुआ कि नहीं, कैसे पता चलेगा कि मेरा रमदान जो है वो कबूल हो गया, मेरे रोज़े, मेरी इबादत रमदान की कबूल हो गई, कैसे पता चलेगा? तो इसकी एक बात अब आपस में अभी से नोट कर लें कि अगर तो रमदान की तरबियत के असरात बाकी 11 महीनों में नज़र आएँ, तो समझ लीजिएगा कि रोज़े अल्लाह के यहाँ कबूल हो गए, आपकी रमदान की इबादत अल्लाह के यहाँ कबूल हो गई। और अगर एक महीने की ट्रेनिंग के असरात हमें बाकी 11 महीने नज़र ना आए तो याद रखिएगा कि ये पूरा महीना महज भूख प्यास बनकर रह गया, क्योंकि अगर जो है वो नेकी की तरफ हमें कदम उठाने की तौफीक नहीं होती तो फिर क्या है, तबाही ही तबाही है, बदनसीबी है और फिर बर्बादी है। तो इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात फरमाई थी कि जो लोग झूठी बातें और गलत काम नहीं छोड़ते, अल्लाह को इनका भूखा प्यासा रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको हुस्ने अमल की तौफीक अता करे। और इस हदीस के साथ मैं अपनी आज की गुफ्तगू को ख़त्म करती हूँ कि कुरान मजीद और मोमिन का ताल्लुक कैसा होता है। इस हदीस को बुखारी और मुस्लिम ने रवायत किया है, अबू मूसा अशरी रदी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं। आप इसको नोट करें, तवज्जो से सुने, बहुत अहम है। और आपने मुझे बताना है अभी लिखकर कि आपका नंबर किस में आता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मोमिन कुरान पढ़ता है इसकी मिसाल उतरुज जैसी है, उतरुज उसकी मिसाल उतरुज जैसी है कि इसकी खुशबू भी उम्दा होती है और इसका मज़ा भी अच्छा होता है। तो वो मोमिन जो कुरान पढ़ता है तो इसकी मिसाल उतरुन जैसी है, उसकी खुशबू भी अच्छी और इसका मज़ा भी अच्छा। तो इसका असल मतलब ये है कि जो कुरान पढ़ता है और उसके मुताबिक अमल करता है तो उसकी मिसाल जो है वो उतरुज है, जो उसका मज़ा है ना उतरुज का, फल का, तो वो कुरान पर अमल करना है तो अभी तो उसकी खुशबू उम्दा हुई और मज़ा भी अच्छा। दूसरा मोमिन है जो कुरान नहीं पढ़ता, इसकी मिसाल खजूर की सी है कि इसकी खुशबू तो नहीं होती, अलबत्ता मज़ा इसका मीठा होता है। इसका ये मतलब है कि मोमिन कुरान जो है वो नहीं पढ़ता मगर इसके मुताबिक अमल करता है तो इसकी मिसाल खजूर जैसी है। और आपको पता है ना कि खजूर जो है उसकी कोई खुशबू नहीं होती, तो जब मोमिन कुरान की तिलावत करता है और उसको आगे बढ़ाता है तो एक अमलों की खुशबू है जो आगे जाती है ना। तो जो कुरान नहीं पढ़ता तो उसकी मिसाल खजूर की सी है कि उसकी खुशबू तो होती ही नहीं, अलबत्ता मज़ा इसका मीठा होता है। और ये तो थी मोमिन की दो मिसालें, एक जो है वो उतरुज की और दूसरी खजूर की। और अल्लाह के नबी ने मुनाफिक की कहा कि और जो मुनाफिक कुरान नहीं पढ़ता इसकी मिसाल हंजला जैसी है। हंजल जो है ये एलवा की तरह का है कि इसकी खुशबू भी कोई नहीं होती और मज़ा भी कड़वा होता है। तो ये कौन है? ये वो मुनाफिक है जो कुरान नहीं पढ़ता। फिर आपने आखिरी बात कही कि वो मुनाफिक जो कुरान पढ़ता है इसकी मिसाल खुशबूदार फल की सी, खुशबूदार फूल की सी होती है कि उसमें खुशबू तो होती है लेकिन मज़ा इसका कड़वा होता है। तो अब मुनाफिक है और कुरान पढ़ता है, तो आप देख लें कि मुनाफिक है और कुरान पढ़ता है तो इसकी मिसाल जो है वो कैसी है कि खुशबू तो है, यानी ऐसा खुशबूदार फूल जैसे अर्रैहाना, रीहुहा तय्यिब व तामुहा मुर, इसकी खुशबू तो होती है लेकिन इसका मज़ा भी कड़वा होता है, क्योंकि मुनाफिक का अमल में मुनाफकत है तो इसलिए देखने में बड़ा अच्छा लगता है, रीहुहा तय्यिब व तामुहा मुर। तो मेरी प्यारी बहनों के मुझे और आपको जो मोमिन बनना है तो यकराउल कुराना मसलुल उतरुज उतरुजा रीहुहा तय्यिब व तामुहा तय्यिब, हमें ये नंबर वन बनना है। वह मसलुल मोमिन अल्लज़ी ला यकराउल कुराना मसलुल तमरा मसलुल तमरा ला रीहा लहा व तामुहा हुलव, तो हमें उतरुज जैसा बनना है। और वह मसलुल मुनाफिक अल्लज़ी यकराउल कुरानी का मसलिल हंजला लैसा लहा रीहुं व तामुहा मुर, ये भी नहीं बनना। वह मसलुल मुनाफिक अल्लज़ी यकराउल कुराना मसलुल रैहाना रीहुआ तय्यिब व तामुहा मुर, और हमें ये भी नहीं बनना। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुरान की दौलत से अपने आप को मालामाल करे, ہمیں ان خوش قسمت بچوں میں شامل کرے جو اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، جن کے والدین کو ایسا تاج بنایا جائے گا کہ جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بڑھ کر ہوگی، اور ہماری زندگی کے جتنے دن ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو میرے اور آپ کے ماتھوں کے بالوں سے پکڑ پکڑ کر صراط مستقیم پر چلائے، ہم سب سے راضی ہو، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔